Medical Association. We welcome all of you to participate in this presentation. I'm very thankful to the organizers of Papa Institute of Diabetes and Endocrinology for giving Imla this opportunity to make this presentation. The program will start with the recitation of the Quran, which will be followed by a presentation by Dr. R.F. Rashid Siddiqui. And the topic presentation is Role of Caregivers Beyond Medical Boundary. And the concluding remarks will follow, which have been given by Dr. Hanif. So inshallah, I request Mufti Farhan to recite Quran and then we'll start the program, inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Islamic Medical Learned Association, most of you might know this name. We will discuss regarding the aims and objectives of IMLA a bit later in this session. So today we are presenting, this is, we can take it as a case scenario and we'll discuss what the vision of IMLA is, taking that case scenario as a presenting. So, role of caregivers means doctors, paramedical staff, nurses, everyone who is involved in the care of a patient. Beyond medical boundary, which we have been studying for long, and this is old lesson revisited. So, this is what our patient comes to us. His questions or her questions are very clear. They want to know what is my disease. They want to know the disease is curable or not. They want to know, okay, what is the treatment available, what would be the limitations in the activity because of that particular disease, and what are the expenses. These are the questions we all address when the patient enters in our OPD, in our hospital, whenever. But if there's something which is left, is there anything else which we should learn and our patient should ask from us as well? If there's something which is left there, that we'll discuss. So let's discuss a case, a common scenario in every hospital. So she is a young female, 46 years old, diabetic, and mother of four kids, and she develops diabetic foot. And she's advised to have amputation of her right big toe under spinal anesthesia. This is, so she comes, let's imagine she comes to our hospital, and these are her questions again. So what is my disease? Obviously she wants to know about diabetes. She wants to know about the complication that she is suffering from. Then she wants to know that, is it curable? This disease, this amputation, this gangrenous foot what she has developed, is it curable or not? And what is the treatment which she would be offered? What would be the expenses of the treatment? This is what, and what would be the limitations she would get after having this procedure, either during the surgery, after the surgery, before surgery and after surgery. And what are the expenses? Again, most of the discussion is around these questions. But I still say that there is anything left which we need to discuss now, and which is the main aim of IMLA and this presentation. So this is a BMJ article of 2002 in which says a good doctor thinks beyond the medical model. What they say is the conclusion. A good doctor should be ready to challenge his or her own taken for granted understanding of the medical knowledge and to acquire knowledge from other disciplines such as sociology, psychology, social work, nursing, environment science, communication studies and others. I still say there is something missing here. Let us see what is that. So what was left, what was missing in that particular case? The patient might ask or he should ask, is it permissible to remove an organ in Islam? How would you dispose it? Once I remove an organ, I remove a tooth from, or anything which I remove, even a placenta, how do I dispose it? Is there a sampling method which is being followed internationally, universally? Do we follow the same? Or is there something different which I should follow as a Muslim doctor, as a Muslim physician? Will I be able to offer my prayers routinely? This is the question which the patient should ask and I should address. If the patient is with me in hospital and admitted and she needs to have a surgery, she might not, he or she might not be able to do proper ablution. Shall I make arrangements for tayammum for her or him? Should I make arrangements to offer prayers for him or her? A common scenario, I went to her hospital, my uncle, my chacha was admitted there post cabbage surgery and he was lying quite well in ICU. ये देख लीजिएगा प्लीज शायद कनेक्टेड नहीं है
बैटरी इसकी
तो मैं इट वाज तकरीबन असर का टाइम था तो मैंने उनसे पूछा कि जो है वो आपने असर की जोहर की नमाज पढ़ ली है तो एक्चुअली वो रोने लगे उनकी आंखों में आंसू आ गए तो मैं कैसे पढ़ूं नमाज तो असर का वक्त था मैंने तयम्मुम करा के उनको नमाज पढ़ा दिया इजी लेकिन ये क्या सिर्फ पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन जो हम वहाँ मौजूद हैं हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक क्या हमने ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि मैंने अपने आप को इस तरह मोल्ड अप किया हुआ है कि मैंने अपने स्टाफ को इस तरह मोल्ड अप किया हुआ है कि वो जब मैं विजिट करने के लिए जाऊं अपने पेशेंट को मैं पूछूंगी आपने जोर की नमाज पढ़ ली है आगे मतलब इन द सेंस कि एटलीस्ट हमारी तरफ से जो है वो ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल हो ना कि जो अवेलेबल है तो वो पूछेगा आपसे कि विल आई बी एबल टू ऑफर माई प्रेयर्स रूटीनली इफ नॉट देन वॉट आर द ऑल्टरनेटिव हाउ वुड आई डू दैट क्या मैं बैठ के पढ़ सकती हूँ सकूँगी या मैं लेट के पढ़ सकूँगी क्या होगा मेरी नमाज खुदा ना खास से ज़ाया तो नहीं हो जाएगी वट एवर और ऑब्वियसली फिर अगेन उसके देन वजू जैसे वी हैव डिस्कस कि किस तरह वजू किया जाएगा तयम्मुम किया जाएगा अगर वजू किया हुआ है उसको पट्टी बंधी हुई है तो उसके क्या है तो लाजिम बात है हर पेशेंट को जिसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है जिसके लिए एक नई चीज़ है वो ये स्लाइड्स आपको हम दे देंगे वेबसाइट पे मिल जाएगी यू कैन टेक दैट क्योंकि इसमें फिर वो परेशानी होती है कि कहीं हमारी तस्वीर ना खींच ली जाए तो उसका प्लीज़ अवॉइड करें तो लाजिम बात है ये हम उसकी फैसिलिटी देना चाहिए वॉट अबाउट माई सतर एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि जी बस इट इज़ है लेकिन एक फीमेल है उसको अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है इवन अगर मेल भी है तो क्या हम इस चीज़ का बहुत स्पेसिफिकली ख्याल रखते हैं नहीं रखते हैं And who will give me anesthesia? Is a female available or not? Again, please. तो ये questions he or she might ask. लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इन चीज़ों को address करें जब आप सारे पुराने questions address कर रहे थे and we should be prepared to offer that. So, a few quotations from Quran Pak and Hadith Mubarakah. So, the caregivers are responsible. The caregivers, the doctor and everyone, जैसे कोई तिजारत कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए तिजारत में क्या हलाल है क्या हराम है and so on. इसी तरह they should know the basic Sharia principles related to their field. हदीस मुबारक है तर्जुमा पढ़ लेते हैं All of you are shepherds and each of you is responsible for his flock. Be aware, each of you is a shepherd and is responsible for his flock. अब वो flock को हम कुछ भी समझें एक patient जो हमारे disposal पर आ जाता है एनेस्थीसिया दे दिया एंड सो ऑन अब उसको तो नहीं पता हम क्या कर रहे हैं और अक्सर लोग अक्सर पेशेंट जब एक डॉक्टर के पास आ जाते हैं चाहे क्लिनिक में या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं वो वाकई हमारे यहाँ तो कम से कम ऐसा ही है कि बस डॉक्टर साहब बस आपने जो करना है आप करें उनका एहसान है मतलब उन लोग का खुशगुमानी रखी हुई हम डॉक्टरों के साथ कि भाई ये तो ज़ाहरी है लेकिन क्या वाकई हम उनकी इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं या नहीं करते मेरी और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आगे से ये बात देखी जाएगी गाइड योर पेशेंट्स उनको समझाना हमें ये चीज़ के बारे में ही पड़ेगा भाई वजू बाद में किस तरह करोगे खड़े होकर नमाज पढ़ने, जैसे अभी मुझे कल ही एक बात बताई गई कि एक अल्लाह वाले थे, उनको तकलीफ थी लेकिन वो उसके बावजूद जो है वो पानी से ही वजू करते थे। हमारे बुजुर्ग ने एक बात बताई, एक तकलीफ थी उसके बावजूद वो पानी से ही वजू करते थे। तो दूसरे एक अल्लाह वाले उनसे मिलने के लिए, उनको जब ये बात पता चली तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या तयम्मुम पर यकीन नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तयम्मुम का तरीका बताया, इसी मकसद के लिए बताया ना। लाजिमन तो उलमा बताएंगे, मुफ्तियान कराम इस बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन एटलीस्ट जब एक ऑल्टरनेट अवेलेबल है तो मुझको तो ये चीज़ें हम कौन बताएगा? अच्छा, एक आम आदमी जिसमें जिसको मुस्तकिल इस चीज़ों का इल्म वो नहीं होता, हम बताएंगे उनको। तो हूएवर गाइड समवन टू गुडनेस विल हैव अ रिवॉर्ड लाइक वन हू डिड इट। किसी और की नमाज का हमने अहतमाम करा दिया, किसी का रोज़ा रखने के बारे में उसको गाइड कर दिया, लादी वादी डायबिटीज़, आप लोग माशाल्लाह इस पर काम मुस्तकिल कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो जी डायबिटीज़ है, दो दंड रखेंगे, एक्सपर्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास, हर एक के पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। देन इट इज़ नॉट ऑल, ये चीज़ और भी चीज़ें इस्लाम हमें और अटेन परफेक्शन इन योर नॉलेज, नॉट ओनली मेडिकल नॉलेज, डेफिनेटली मेडिकल नॉलेज तो करनी है, तो हमारी फील्ड है, लेकिन अदरवाइज एज वेल, वेरली अल्लाह हैज़ प्रिस्क्राइब्ड एहसान, प्रोफिशिएंसी एंड परफेक्शन इन ऑल थिंग्स, एंड सिमिलरली अल्लाह लव्स समवन हू ट्राई टू डू हिज वर्क इन अ परफेक्ट वे। अपने अपना जो आपका इल्म है उसमें खूब तरक्कियाँ करनी चाहिए, खूब बेहतर से बेहतर इल्म हासिल करना चाहिए, दीन या कभी भी आपको वो नहीं, बेस्ट मॉडल आप चूज़ करें, बेस्ट चीज़ें आप सीखें, लेकिन साथ साथ उसमें जो है ना ये भी देखें कि भाई मुझे अपनी इस चीज़ की भी इनफ नॉलेज है या नहीं है, जिस दीन के साथ हम वाबस्ता हैं, जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। तो गेट रिवॉर्ड फॉर योर प्रोफेशन, जो हम काम कर रहे हैं, क्या द डीड्स आर कंसिडर्ड बाई द इंटेंशन एंड अ पर्सन विल गेट द रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन। अगर मैं सिर्फ एक पैसा कमाने की नज़र से लाजमी बात है डॉक्टर, ऐसा बहुत अनलाइकली है, लेकिन बाहर लेकिन वहाँ पर नीयत एक ये भी हो कि मरीज़ बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उससे दुआएं मुझे मिल जाएंगी, ये सब चीज़ें, इस चीज़ की भी हम रोज़ाना इसमें हम जब मैं सुबह ओपीडी के लिए आऊँ तो वो करें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब एक हदीस से भी गालिब मफहूम है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला पूछेंगे कि मैं बीमार था, तो मेरी जो है ना वो कुर्सी इसके लिए नहीं आया, मुझे पूछने के लिए नहीं आया। अल्लाह सुब्हानहु तआला, आप बीमार? कह रहे हैं हाँ। अगर तू मरीज़ के पास आता उसकी तैमारदारी के लिए, उसको पूछने के लिए, तो तुझे तू वहाँ पाता। तो क्या ये मैं सोच के जब हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब जाओ राउंड करने के लिए नियत कर लो तैमार और मरीजों से दुआ कराएं। तो ये सब चीज़ें हम इसी जगह रहते हुए हम अपनी तरक्की भी करने की ख्वाहिश होनी चाहिए और हमारे मरीजों की भी तरक्की की, दीनी भी और सेहत के अतबार से भी। सो वी आर डॉक्टर्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एट गुड टीचर्स, दे आर लीडर्स, दे आर एजुकेटर्स, दे आर पेशेंट एडवोकेट्स, ये सब चीज़ें वी ऑल नो अबाउट इट, दे आर कम्युनिटी वर्कर्स, दे आर हीरोज, बट एट द सेम टाइम दे आर अ गाइड फॉर इस्लाम एज वेल, दे गाइड राइट फॉर द रिलीजन एज वेल, दे कैन बी द बेस्ट प्रीचर्स एट ऑल। तरीका लाजिम आते हैं वो समझना है किस तरह काम करना है, लेकिन अपने अच्छे जेस्चर्स से वो चीज़ें कम अज़ कम फैसिलिटेशन से तो हम कम अज़ कम इन चीज़ों को लेके चलें। तो वॉट इज़ इमला? इमला इस्लामिक मेडिकल लर्नर्स एसोसिएशन, तकरीबन 7-8 साल पे इसी चीज़ की मेहनत जिसको हम डिस्कस करते रह रहे हैं कि थॉट प्रोसेस डेवलप हो, इसको हम पे अप्लाई करें, मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ, अपने प्रोफेशन में अप्लाई करूँ, हमारे जानने वाले अप्लाई करें, हमारे हॉस्पिटल उस तरह हो जाए, तो ये इसलिए है। तो वॉट इज़ अवर विजन? अवर विजन इज़ द विजन ऑफ इमला इस्लामिक मेडिकल लर्नर्स एसोसिएशन इज शरिया कंप्लाइंट हेल्थ केयर प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी। This is what our vision is, कि every healthcare facility, whether it be in Pakistan, Saudi Arabia, US, UK, United Arab Emirates, wherever the facility it would be, it should be Sharia compliant. And why would they take this? Why would the other person would take it? Because we would adopt the best medical resources. Medical resources में कमी नहीं करेंगे, बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको ट्रीटमेंट प्रोफ्राम करने की कोशिश होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द विजन इज, डिलीवर्ड इन द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, बनाए बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी बनाए, लेकिन एट द सेम टाइम थ्रू एन अनमैच्ड मॉडल, वो मॉडल जो हमें बताया गया है, वो मॉडल है शरीयत का, सुन्नत का, कि उस मॉडल को जब हम साथ लेके चलेंगे तो यही प्रैक्टिस के अंदर चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। बहुत बड़ा विजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हमारे जो एड्रेसिंग हैं वो केयर गिवर्स भी हैं, यानी कि हम सब हैं, केयर सीकर्स भी हैं, पेशेंट्स भी हैं, उनको वो भी हमारे इस विजन के लिए हमारी ज़रूरत है, उनके उनको भी समझना, उनके लिए भी करना, और एट द सेम टाइम वो फैसिलिटीज़ भी हैं, वो हॉस्पिटल्स, वो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली जब हम तालीम देंगे बच्चे को, बताएंगे कि भाई हमारे जूनियर डॉक्टर जो बन रहा है उसको हम बताएंगे कि कंजंक्टिवाइटिस है किसी को, उसको ये तो बता देंगे कि इसका इलाज है, लेकिन कहीं किसी स्टेज पे मैं ये बताऊंगा जब कंजंक्टिवाइटिस के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा हो जाती है तो उसको अच्छी तरह साफ करके फिर वजू करना चाहिए, वरना वजू नहीं होगा। और बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल सकती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या मुश्किल से भी हमें उसको बचाने की फिक्र होनी चाहिए। तो हाउ आर वी ट्राइंग टू डू दिस, इमला कैसे कर रहे हैं? सो द प्रायोरिटी, द बेसिक थिंग इज टू ब्रिज अ गैप। ब्रिजिंग द गैप इज अ मेजर इशू। किस किसके दरमियान जो गैप हो गया है बिटवीन द इस्लामिक नॉलेज, बिटवीन अवर इस्लामिक स्कॉलर्स एंड द मेडिकल प्रोफेशन, ये जो गैप होता चला जा रहा है उसको हमें ओवरकम करने की कोशिश। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक शरिया प्रिंसिपल्स हमारी लैकिंग है, डॉक्टर्स को मालूम ही नहीं है। और एट द सेम टाइम जो हमारे मुफ्तियाने कराम वगैरह हैं उनको हमने नॉलेज इम्पार्ट नहीं की, उनको पहुँचाया नहीं कि भाई पहले की रिसर्च क्या थी, अब की रिसर्च क्या है। वो उसी जो पुरानी रिसर्च के एतबार से वो लाजिमत हमें चीज़ें बता रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे। अब देखिए अब तो नई रिसर्च आ गई है जी, अब ये नई चीज़ें आ गई हैं, आप दोबारा से चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये नॉलेज को करना है। और उसके लिए हमने क्या किया कि इमला की जो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया उसमें हमने डॉक्टर्स लिए, सीनियर डॉक्टर्स फिजिशियंस होते हैं उसके अंदर हमारे इस वक्त जो करंट इमला के जो अमीर हैं वो डॉक्टर शैम्बिल अशरफ हैं, डॉक्टर तुफैल, डॉक्टर हनीफ हैं मौजूद, डॉक्टर नदीम सीनियर लोग हैं, सब मौजूद हैं। और इसी तरह मुफ्तियाने कराम हैं जो हमारे साथ मुस्तकिल हैं, और ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अवर सीनियर जो है स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती तफ्तीश महत दाम वरकातु, मुफ्ती मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दाम वरकातु, मुफ्ती अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम साहब दाम वरकातु, इन सब और बहुत सारे उसमें सबसे ताल्लुक में रहकर तो हमने कोशिश ही की। और हम क्या कर रहे हैं कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा दूसरा पहली चीज़ तो ये ब्रिज करना कि नॉलेज को दोनों का जो है ना आपस में नॉलेज का जो है ना वो कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को करना, एंड टू डेवलप अ न्यू थिंकिंग प्रोसेस जो हम अभी डिस्कस कर चुके कि जब पेशेंट को देखें तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, एंड अ कंटिन्यूस एजुकेशन। कंटिन्यूस एजुकेशन इसी चीज़ के मुतालिक, जो नया केस आएगा कोई नई चीज़ इसमें, ऐसा तो पॉइंट कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर खुदा ना खास्ता में कोई गड़बड़ मेरी दीनी तरफ से कुछ परेशानी हो, एंड ओवरकमिंग दिस चैलेंजेस जो आते रहेंगे इसके अंदर, नई नई चीज़ें आती रहेंगी, नई नई इजाजत आती रहेंगी, नई नई चीज़ें आती रहेंगी, हम उसको किस तरह मेक श्योर करें कि ये वी आर डूइंग द राइट थिंग। 99% चीज़ें सॉल्व्ड हैं, हमें मालूम नहीं, हम रिसर्च करते हैं ढूंढते हैं बताए तो मौजूद हैं, लिटरेचर मौजूद है, मुझे उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है हम उसको कैसे डील करें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस अ फ्यू कॉमन सिनेरियोस, ये सारे वो सिनेरियो जो कि एक्चुअली बिल्कुल रियल सिनेरियोस हुए। अब मेक बहुत एडवाइस है एंजियोग्राफी, प्रोसीजर वॉज एक्सप्लेन्ड, प्लान टू डू वाया फीमोरल कैप, फीमोरल रूट, ठीक है जी फेयर एनफ। ही वॉन्टेड दैट हिज फेदर शुड बी शुड नॉट बी एक्सपोज, उसने कहा जी ये तो मैंने, and he did not want to stay on bed post procedure so that he can offer a prayers regularly, jis tarah wo normally padte hain namaz baith ke padhna whatever unka khayal tha, so this it was discussed and the procedures were done by radial route, so this was adopted unne kar liya। so this is ye ki unhone ek baat doctor ne batayi aur patient ko ye khayal hua usne pooch liya to ek humne ek route nikal aaya, ho sakta tha radial se possible nahi hota, nahi kar pate baad mein, ho sakta nahi ho sakta to ek alag baat hai, femur was always there, lekin जो पेशेंट है ना उसको ये बात मालूम नहीं है कि और तरीका भी हो सकता है, उसको भी पूछना है और हमें भी इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। हम बेस्ट पॉसिबल तो देंगे, जहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है वहाँ ये ऑप्शन है उसको दे नहीं सकते, लेकिन जो ऑप्शन है तो डिस्कस किया जाता है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है बिटवीन फीमोर और रेडियल रूट के अंदर, लेकिन भारत होता है और हुआ। सिमिलरली अब पेरिटोनियल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग फास्टिंग, पेशेंट कॉल्ड अ डॉक्टर पोस्ट फेशियल सर्जरी दैट ही हैज अ फॉलो अप अपॉइंटमेंट, कैन ही फास्ट सिंस पी आर एग्जामिनेशन पर रेक्टल एग्जामिनेशन ब्रेक्स फास्टिंग, ही वॉज री अश्योर्ड दैट रेक्टल एग्जामिनेशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड एनी फास्ट। उसको भी ख्याल गुजरा कि मैं रोज़ा अपना ना छोड़ूँ, उसने डॉक्टर से फोन करके पूछा और फिर उसके बाद ऑब्वियसली उसने भी कह दिया आप परेशान हैं हमें ज़रूरत ही नहीं करने की, तो उसे रोज़ा रख लिया। वरना क्या हुआ जब बाद में ये बात हमने डिस्कस की विद इन अवर सर्जन, तो उन्होंने कहा जब से मैंने ये बात पूछना शुरू की है मेजोरिटी लोग बगैर रोज़ा रखे आ जाते हैं कि हमें तो ये एग्जामिन आप करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम रोज़े ही ना रखें। कितने लोगों के रोज़े छूट जाते हैं, तो ये हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। मैं रियल सिनेरियो बता रहा हूँ, उस पर कोई वो नहीं है, ये वो सिनेरियो जो कि इतना ख़तरनाक। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव इट डन अ क्लोनोस्कोपिक प्रोसीजर, इट वॉज इम्पॉर्टेंट, इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि रमज़ान में होना चाहिए, हम तो कोशिश करेंगे डेफर करेंगे, इट वॉज इम्पॉर्टेंट। पेशेंट वॉज फास्टिंग, But was advised to take colonoscopy solution जो दिया जाता है ताकि colono preparation के लिए ताकि गल oral and start preparation immediately and he agreed. दोपहर को 4 बजे 3 बजे उनको ये दिया गया, 2-3 बजे की बात थी कि इसकी अभी से आपको तैयारी शुरू करनी है, 4 बजे सोल्यूशन पीना है और रात को 8 बजे पीना है और ये रमज़ान है. उसने एग्री कर लिया. लेकिन क्या ये परमिसिबल है कि कोलोनोस्कोपी के प्रोसीजर के लिए हम किसी का रोज़ा तोड़वा दें? ना उसने इस बारे में सोचा, ना देने वाले ने इस बारे में सोचा. 3 मुख्तलिफ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, किसी ने इस बारे में नहीं सोचा. इत्तेफाक की बात है, ये मदद है अल्लाह की सुभान व तआला की कि वो सॉल्यूशन नहीं मिला, वो दोबारा ऊपर आ गया और किसी से मुलाकात ही हुई तो उसने कहा भाई आप ये प्रिपरेशन 7 बजे शुरू कर देना, 7 बजे ले लेना या 8 बजे ले लेना, रात को 12 बजे कर लेना, तुम्हारा रोज़ा कैसे तोड़ सकते हैं आप इस बारे में? उन्होंने कहा ग्रेट, बट अदरवाइज दे वर ऑल प्रिपेयर्ड टू डू दिस थिंग्स, द पेशेंट द फैमिली एंड द डॉक्टर हु एडवाइज्ड. अब मुझे बताइए खुदा ना खास्ता ये हो जाता, मुफ्तियाने कराम मौजूद है, माशाल्लाह बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, क्या होता? ये इसलिए कि थिंकिंग प्रोसेस हमारी लैकिंग है. द केयर गिवर, द केयर सीकर एंड द इंस्टीट्यूट, दे ऑल हैव टू मेक, ऑल हैव टू मेक द एफर्ट्स. उनको सोचना चाहिए इस बारे में. सो ही वाज टेक एडवाइस टू टेक सॉल्यूशन आफ्टर. उसका अगला दिन का रोज़ा तो ठीक है, मजबूरी थी करना था, लेकिन रोज़े को तोड़ना, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, गैर जरूरी तोड़ना, अब क्या मसाइल में इसकी बात, लेकिन बहरहाल एक रोज़ा छूट जाना तोड़ देना वो अपनी जात में कितनी खतरनाक बात है. अब ये फास्टिंग का मसला, ये हमारी वो स्लाइड है जो हमने अभी कुछ दिनों पहले DUHS के अंदर प्रेजेंट किया था रमज़ान के अंदर, तो मैंने उसकी 2 स्लाइड सिर्फ दी हैं, शायद थोड़ा सा रेलिवेंट लगे. लेकिन बात ये, अब एक कोई शख्स कहता है मैं बीमार हूँ, मैं रोज़ा नहीं रखना चाहता, या मैं रखूँ या नहीं रखूँ, तो वहाँ पर क्या होता है? एक उसका अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है. वो कहता है जी मैंने लास्ट टाइम भी जब जो है ना वो ये दमे की बीमारी मैंने रोज़ा रखा था, मेरा इतना शदीद ख़राब हुई, तबीयत हो गई कि मैं हॉस्पिटल चला गया. ठीक है, एक रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं जो मुफ्तियाने कराम बताएंगे कि भाई इन इन चीज़ों के बगैर तो आप रोज़ा छोड़ नहीं सकते. वो प्रिंसिपल्स ऑब्वियसली एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, डिस्कस अभी नहीं कर रहे. एक मेडिकल ओपिनियन होता है. ये तीनों चीज़ों से मिलकर हमारी कोशिश क्या होना चाहिए कि हमारा जो पेशेंट है वो नमाज अच्छी तरह पढ़ ले, वो फास्टिंग रोज़ा उसका कोई ना छूटे, एंड सो ऑन, जो जो जिससे सिनेरियो के अंदर आए. तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए द डॉक्टर के एक शख्स रोज़ा कब छोड़ सकता है. कि मैं एक जनरल बता रहा हूँ, मैं इस पर फैसला नहीं करूँगा. लाजिम से मुफ्तियाने कराम जाते इतना अच्छा रबता हो कि फिर मैं अपने पेशेंट पर पे, क्योंकि मुफ्ती साहब जो है ना वो कहेंगे डॉक्टर तुम्हारा जो है वो क्या कहेगा, आपके डॉक्टर ने क्या बात की इसके मतलब. अगर कोई मरीज जाता है वो मुफ्ती साहब मुफ्ती कहेंगे आपके डॉक्टर ने इस बारे में क्या बात की है, तो डॉक्टर तो बिल्कुल इस वक्त में बिल्कुल एक फतवा दे रहा है. जो डॉक्टर लिख के देगा कि भाई मैं तो समझता हूँ आपको ज़रूरत नहीं है रोज़ा, आप नहीं रख सकते रोज़ा, तो मुफ्ती साहब कहेंगे डॉक्टर ने लिख दिया, वो आप तमीज़दार आदमी है, दीनदार आदमी है, ठीक है. तो वैसे अगर किसी वजह से कोई आपकी फिजिकल कंडीशन ख़राब हो रही है, ये फैसला अगेन मैं बेकार ब्रॉड एस्पेक्ट में होगा, जनरल बता रहा हूँ, रिकवरी किसी वजह से स्लो हो रही है, रोज़ा रखने की वजह से आपकी मेंटल कंडीशन ख़राब हो सकती है, या फिर वजीद आपका दर्द या बीमारी ख़राब हो सकती है, तो एक जनरल प्रिंसिपल है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं. तो लेकिन ये बातें मुझे और हमको समझनी पड़ेगी. इतने उसके लिए हमें बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए कि हम ये कर सकें. एंड ऑब्वियसली ऑलवेज 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 विद द इंट्रैक्शन ऑफ मुफ्तियाने कराम. जब तक इतना स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं होगा बिटवीन द इंस्टीट्यूट एंड एनी ऑफ द शेप, हर जगह पे हम जब वहाँ पे इंग्लैंड वगैरह के अंदर वहाँ पे वो चैपलन होता था, क्या होता था ना वहाँ पे होता था, हमारे यहाँ ऐसा क्यों इंतज़ाम कोई नहीं है हमारे हॉस्पिटल के अंदर कि मैं खुद इमिजिएटली उसको उनको बुलाऊँ, मैं उस मरीज़ को कह दूँ कि उसके अटेंडेंट को बोलूँ तुम जाके उनसे कुछ मशवरा कर कर आ जाओ. तो आई मीन दिस इज जस्ट अ थॉट, मुझे नहीं पता हम क्या. तो इमला इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों हमने इसको बनाने की कोशिश की डॉक्टर हनीफ, बिल्कुल इनिशियल जो 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 थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ डॉक्टर हनीफ की तरफ से हुआ, चल रहा है अल्लाह ताला चलाता रहे. तो इसकी रिक्वायर्ड ये रीज़न है सारे कि क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि वो बेसिकली हम हर वक्त इसके लिए ट्यून नहीं थे ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में ट्यून करने के लिए कि अब मैं सोचना शुरू कर दूँ, सोचना शुरू कर दूँ. और हमारी वर्किंग स्ट्रैटेजी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है कि हम जो है ना उलमाए कराम को बुलाते हैं, मुफ्तियाने कराम को बुलाते हैं, हमने एक तरीक़ेकार बनाया, हमने कुछ चीज़ें जमा की, फिर हमने उनको मुख्तलिफ दारुल इफ्ता में भेज दिया, उनसे जवाब आते रहे, हम उसको डिफरेंट तरीके से हम पब्लिश करते रहे. कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं वो हमने पब्लिश किया, जैसे इसमें सिर्फ हमारी ये नहीं, जैसे हमने अभी एक HR का मॉडल, ह्यूमन रिसोर्स का मॉडल डिफाइन किया, with the permit, with obviously and sab fair ke bhai HR ki policies bhi medical hospital ke andar to galat to nahi hai, koi khuda na khasta usko bhi dekhna chahiye, ye bhi sab isi ka hissa hai. So what is done so far, ye cheeze hoti reh rahi hain, mukhtalif logon se mulaqatein, ye sab cheeze hoti rahi hain, conferences, kuch logon ke baad aagahi session hone chahiye. And why are we here? Why are we here? Sabse pehli baat to ye hai ki taaki mera isme hissa pad jaye, koi baat main amal karne wala ban jaun, ye kehne ke baad hum mein se koi amal karne wala ban jaye, hum dusre ko is bare mein sochna shuru kar dein. Aur phir ye imla ya is jaisi organization ya ye jo bhi system hai, imla na bhi ho, wo strength padti rahe, ek ho, 5 ho, 100 ho, 1000 ho, jitne log zyada hote rahenge utni zyada ye cheeze propagate hoti rahengi, hum samajhte rahenge. Main aap se puchunga, aap mujhse puchhenge, hum milke isko badhate rahenge. ye isliye nahi aage badh pa raha ki hum apni obviously medical line mein to hum rajneeti kaam karna hamari zarurat bhi hai aur hame karna bhi chahiye, hum us education ke liye mehnat kar rahe hain, hame karna bhi chahiye, lekin sath sath is taraf bhi kuch ek waqt hafte mein koi aadha ghanta ek ghanta kuch waqt hum is bare mein bhi sochein ki hum subah se lekar sham tak jo kar rahe hain usme kya improvement ki zarurat hai, wo forum aapko kya milega, wo forum jo hai hum imla ke taur pe hum aapko batana chahte hain, forum imla ki zarurat mein maujood hai, jo isme contribute karna chahega apne waqt ke sath, main uski baat kar raha hu, warna kala bag ho, ramzan ka mahina ho to log kehte hain ki ye to ab niklegi parchi ke imla ke liye contribution bhi karte jaye bahar, to wo contribution ki zarurat nahi hai, maqsad ye hai ki financially in the sense with time aur apni expertise ke sath, to wo usko kare aur phir uske sath hamara saath dein. So this is why we were here, aur this is our website, this is our office, and obviously contact number hamare jo imla ke secretary jo uske rooh rawaye kaam karne wale unse discuss kiya ja sakta hai. So I thank you very much for listening this, and I would ask Dr. Hanif to just conclude the session, and before that for any questions if you want we are here to answer. Mufti Farhan sahab is here, Dr. Hanif, Dr. Nadeem are here, we can answer your questions. So if you can ask any questions, we are here to answer, please. इवेंट्स हमारे जो है वो इनफ्रिक्वेंट रहे, रेगुलर नहीं होते रहे. उसकी वजह कुछ ये भी रही कि हमारा पहले इनिशियली जो हमारा वर्किंग स्ट्रेटजी थी उसमें हमने चूज़ ये किया कि हम रिसर्च वर्क ज़्यादा करें और उसको प्रोपगेट करें. मुल्ला अब्दुल सत्तार साहब दामरकाते से हमारी मुलाकात हुई अभी कम से कम 3 महीने पहले, तो उन्होंने बात फरमाई कि आप जितने मसाइल पर काम कर लें वो भी करना ज़रूरी है, लेकिन जब तक जहन साजी नहीं होगी, जब तक लोग इस बात को समझेंगे नहीं, तो आपका उस पर काम करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है. तो उसको वो चलता रहने लगे, लेकिन ये सेशंस, तो दिस इज व्हाट चेंज इन स्ट्रेटजी हैज़ बीन फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. तो ये हमारा सेकंड सेशन है, एक रमज़ान में हुआ था, एक ये हुआ था. थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स हमारी यूँ रहती हैं कि हमें एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है इन एनी हॉस्पिटल. हमने इस बात को इस बात के लिए ज़रूरत महसूस की है, वो ये है कि जब आप एक इस्लामिक फोरम पे आएँ तो उसके लिए एक सेपरेट अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए, विच इज़ एट टाइम्स डिफ़िकल्ट. तो ये हमारी शॉर्ट कमिंग रही है. तो अवर प्लान वुड हैव बीन कि दिस एटलीस्ट दिस प्रेजेंटेशन विच वी हैव डन टुडे वी शुड एटलीस्ट एवरी मंथली और एटलीस्ट एवरी सेकेंड मंथ ऑल्टरनेट मंथ में किसी न किसी हॉस्पिटल में जाके इस तरह. तो हमारा इस वक्त नेक्स्ट 1 ईयर का जो प्लान है इज़ टू गेदर पीपल जो हमारे साथ चलने की कोशिश करें, फिर ऑब्वियसली वी कैन डिवाइड. हमारा प्लान 100 साल का तैयार है कि हमें अगले 100 साल में हमें क्या करना है. इट इज़ ऑलरेडी इन द लास्ट 3 साल 4 साल हम तैयार कर चुके थे. वी लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स. आपके पास जो नेक्स्ट कोई
ट्रेनर प्रोग्राम होता,
बिल्कुल जी जी,
हर शहर के अंदर एक फैकल्टी ट्रेन कर दी,
एग्जैक्टली
मास्टर ट्रेनर वो अपने छोटे छोटे शहरों में
जी, बिल्कुल जी हाँ. ये हमारा जो उसमें था वो यही था कि ट्रेन द ट्रेनर्स भी इसमें शामिल है, लेकिन ऑब्वियसली हम उस पर कहाँ खड़े हुए हैं वो फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे. लेकिन एट दिस मोमेंट तो हम इस वक्त में सिर्फ हमारा ख्याल ये है कि हम उस बंच को दोबारा एक्यूमुलेट करें जो कि विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स जो थोड़ा शैटर हो गया, स्कैटर्ड हो गया, बंच बन जाए, एक टीम बन जाए, एंड देन ऑब्वियसली ये सब चीज़ें करनी है. ऑब्वियसली आई मीन ये तो ट्रेन द ट्रेनर्स इज़ इम्पॉर्टेंट.
कई साल पहले जब हमारे कबीर में डॉक्टरों के जोर हुआ करते थे, एक अलाइनमेंट में जो निर्माण एहसान साहब ने पूछा कि कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल ऐसा है जो 100% शरिया कंप्लायंट है, तो सबसे याद करता है सर, एक आध डॉक्टर साहब से, एक तो डॉक्टर तारिक खान उनका ज़्यादा मशहूर है बंगाल में, 100% है कर्शलिया कंपनी, एक आध कोई जनरल प्रैक्टिशनर। अभी इसके अंदर कई चीज़ें हमें मालूम करनी है अपने लिए, अगर हम अपना इदारा शरिया का फ्रेंड बनाना चाहते हैं, कुछ आप लोगों ने जो मालूम किया हुआ है या कहीं आप हमें वो भी बताइए कि कौन कौन सी और चीज़ें। एक हो गया भी पेशेंट की नमाज और उसका ख्याल करें, लेकिन शरिया कंप्लाइंट अगर हमें इदारा बनाना है तो सफाई अप्रोच क्या होनी चाहिए, सरकार।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें अगेन जो अगर हम सिर्फ बात करें जनरल हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की, तो वो एक एस्पेक्ट है जिसके लिए हमें, क्योंकि हम यहाँ पे इस वक्त डॉक्टर्स बैठे हैं ज़्यादातर, और हमने हेल्प उस वक्त ली थी एचआर स्पेशलिस्ट के साथ जब हमने एचआर का बनाया था। फिर हमने सिमिलरली फाइनेंस के स्पेशलिस्ट से बात की थी, जब हम फाइनेंस के लिए हम उसको कम्प्लीट अभी नहीं कर पाए हैं। तो एवरीथिंग इज ट्राइंग टू डू दैट, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हॉस्पिटल का, वो तो विद इन द हॉस्पिटल बनने से पहले तो बनानी, फॉर एग्जांपल इस तरह, लेकिन विद इन द हॉस्पिटल फिर चेंजेस लानी पड़ेंगी, वो ऑब्वियसली हर जगह के डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन एक जनरल आइडिया, एक जनरल प्रिंसिपल जो हो, एक होना चाहिए कि दिस इज द मिनिमम विच हैज़ टू बी एक्वायर्ड किसी जगह के ऊपर भी। तो वो तो उसको हम मिनिमम सेटअप, वो हम इंशाल्लाह किसी वक्त साथ बैठ के इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि एक हॉस्पिटल मॉडल हॉस्पिटल अगर बन जाए, अल्लाह करे ये हॉस्पिटल हो, एक मॉडल हॉस्पिटल अगर बन जाए तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इट माइट टेक फ्यू इयर्स, लेकिन एक मॉडल हॉस्पिटल वो चेंज लोड्स ऑफ
हमारे सारी फैकल्टी, डॉक्टर टीचिंग फैकल्टी या डॉक्टर के अलावा भी बुलाया है, एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर है, एचआर भी है, फाइनेंस वाले भी हैं।
बिल्कुल,
तो आप हमें अगर अभी मिसाफ हमारे सिटिंग करनी होगी,
बिल्कुल करना पड़ेगा,
तो सिटिंग को अरेंज करने के लिए क्या करें
हम, आप जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनके साथ रख के, और अभी हम रूटीनली जो ये कर रहे हैं कि हम इस वक्त सेकंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ मिल रहे हैं ना, सेकंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ हम लोग इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मिलते हैं मॉर्निंग एट अराउंड 7:30 एंड वी ट्राई टू फिनिश बिफोर 9, सो देन वी ऑब्वियसली डू इट। तो वो एक ऐसा हमारा एक फोरम होता है, एक हमारी एक वो होती है जिसके अंदर डिफरेंट लोग मौजूद होते हैं, उसमें भी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो मेरा ख्याल ये कि इस तरह किसी उसमें हम कभी बैठ सकते हैं, और देन ऑब्वियसली वी कैन टेक थिंग्स फ्रॉम देयर, एंड देन ऑब्वियसली जो जो चीज़ें हम हेल्प आउट कर सकते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज हम जरूर करने के तैयार हैं इंशाल्लाह।
हर दफ़ा मुख्तलिफ जगह भी होती है?
नहीं, अभी हमने इस वक्त जो रखी है वो पटेल हॉस्पिटल में रखी है। एवरी सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ पटेल हॉस्पिटल में, अभी हम सिर्फ फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए जो हम कर रहे हैं उसको हम ऐसे आगे प्रोपोगेट क्या करें, उसमें हम क्या काम करें। जैसे अभी हमने एक सॉर्ट ऑफ एथिक्स पर काम हुआ है, दुनिया में काम हो, उस एथिक्स को मुफ्ती फरहान साहब मौजूद हैं और मुफ्ती वसीम साहब वगैरह हम बैठ के, हमने उस एथिक्स को और इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ उसको हमने बिल्कुल तैयार कर दिया। इट्स एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह इज रेडी, कि वही कि वो उसमें एहसान कब होगा, इखलास कब आएगा, नीयत किस तरह हमें अपनी करनी है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें सामने आती चली। हम कंसेंट फॉर्म ले रहे हैं, हमारी वेबसाइट के ये हम इसको अपलोड कर देंगे साइट्स को, लेकिन ये जो हमारे कुछ चीज़ें जो जिसको हमने वेट करवा लिया है फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज लाइक दारुल कोरंगी या दारुल इफ्ताज वगैरह से, जो तो उसको हम अपलोड करते हैं, वरना हम अपलोड नहीं करते। तो वो जैसे हमने एक दफ़ा एक मीटिंग की
जिस प्रोवोकिंग सिनेरियो था जहाँ से आप कह रहे थे
जी,
बहुत सारे लोग लेट आए, वो बात उस तरफ लोग नहीं आई मतलब लोगों के लिए, लेकिन वो इस वक्त यही सवाल से पूछ रहा हूँ कि ये प्रेजेंटेशन जहाँ से आपने जो पहला
जी, ये पूरी अवेलेबल हो जाएगी, ये पूरी इसी तरह हम अपलोड कर देंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर, आज ही हो जाएगी इंशाल्लाह, तो वो कर सकते हैं।
इसमें से एक सवाल ये आया कि अगर जो फीमेल प्रोफेशनल्स हैं उन्हें सवाल पूछने हो तो वो कैसे अप्रोच करें, और क्या कोई इसका फीमेल विंग या फीमेल आम भी है या
जी
अपने महरमों के जरिए आप ही हिसाब से पूछें।
बिल्कुल, इस बारे में फीमेल विंग अगेन अभी बंच बन जाए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हमारे प्लान में, लेकिन इसमें जो सवालात करें उसमें ये जो हमारा ईमेल एड्रेस है इस पे कर दें, और जनरली हम जब अगर किसी इस तरह की मीटिंग में होते हैं तो फिर हमने ये रखा होता है कि वहाँ पे वी टेक पेपर पे क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं एंड वी एड्रेस दिस इन द प्रेजेंटेशन। तो इस तरह ही, और बाकी अदरवाइज जो सवाल आते हैं वो भेज दें। लेकिन अगेन आई हैव टू से कि देखें, अभी इमला जो है वो आपको मसाइल के ऊपर जवाब नहीं देगा unless it is very clear and very well defined है, तो हम उसको आपको reference के साथ आपको भेज सकते हैं, this is okay. लेकिन otherwise हम आपका time दे सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, मुख्तलिफ राय मौजूद हैं. यही ये वो चीज़ है जहाँ पे हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग रहा है इमला को, बिकॉज वी हैव टू स्टिक टुगेदर. यहाँ पे अगर हम आगे अगर पीछे हो गए तो प्रॉब्लम होगी. और एक वक्त ऐसा हुआ हमारे पास एक ही अल्हम्दुलिल्लाह एक ही फोरम में चार मुख्तलिफ दारुल उलूम के, दारुल उलूम कोरंगी, बिनोरी टाउन, जामतुर रशीद और अमजदिया था ना, इनके चार अफराद के मुफ्तियाने कराम मौजूद थे एक सेशन में. एंड हमने वहाँ पे दो एक या दो पॉइंट डिस्कस किए थे एंड टुक देयर सजेशन एंड एवरीथिंग. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. आप कुछ सवाल पूछ रहे थे जी?
जी
जी हाँ, वही मैंने अर्ज़ किया जी, वो मैंने अर्ज़ किया कि जब हम इमला के विजन की बात करते हैं तो इमला का विजन ये है कि जब एक हॉस्पिटल या कोई मेडिकल सेटअप डेवलप होता है, चाहे वो एक डिस्पेंसरी हो, चाहे वो एक गायनी का कोई यूनिट हो, जो भी बन जाता है, अगर जब वो होगा तो वहाँ पे ए टू जेड सब चीज़ें जो है ना वो शरिया कंप्लाइंट होनी चाहिए, जिसमें एचआर पॉलिसी भी होनी चाहिए, जिसमें फाइनेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. एकेडमिक्स किस तरह वहाँ पे डेवलप करेंगे, जूनियर्स को ट्रेनिंग टीचिंग किस तरह होगी, तो सब चीज़ें इसमें होती है. अगर हम सिर्फ कंसेंट फॉर्म की बात करें ना, हमें महीनों लग गए कंसेंट फॉर्म के बारे में डिस्कस करने में. और किस चीज़ में लग गए कि एक बच्चे की का वली कौन होगा, एक वो बच्चा जिसका बाप तो मर गया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉमन सिनेरियोज हैं, और फाइनेंस कोई और कर रहा है, हमारे साथ आते हैं ना, फाइनेंस कोई और कर रहा है, रहे वो किसी और के पास है, ये बहुत सारी चीज़ें. सिर्फ एक बच्चे का वली होगा कौन? माँ कहती है कि जी इसका इलाज करो, कैंसर का डॉक्टर शैम्बल मौजूद नहीं है, आप एग्जांपल्स को देखिए, जी कैंसर है लेकिन इलाज करो हम तो करेंगे. जिस चचा या ताया के पास रह रहा है, इसके पास रह रहा है, वो कह जी मैं तो पैसे नहीं दे रहा, मैं नहीं दे सकता पैसे. अब हम किसकी बात मानेंगे? मुझे मालूम तो नहीं इस बारे में, मालूम तो नहीं है मुझे इस बारे में, लेकिन अब क्या होगा, क्या गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेगी इस बात को? मतलब ये सारे सवाल हैं, तो ये आते हैं. तो हम सिर्फ एक महीनों लग गए हमें इस चीज़ को डिस्कस के विलायत. और कौन दूसरा मसला आपने कॉल कर किया था? एक विलायत वाली बात की थी, कम्युनिकेबल डिजीजेस के मुतालिक हम बात करने की कोशिश करते हैं जी, रात अफशा के मुतालिक. फॉर एग्जाम्पल अब एक ऐसा किसी को, फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड एचआईवी है, तो एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस एक मुख्तलिफ है. वहाँ पे यह है कि अगर वो आता है तो अगर आपने किसी को बता दिया, स्पाउस को बता दिया, उसने खुद बताया नहीं बताया, अभी गवर्नमेंट हैज़ टेक ओवर, हमारे पास तो ये मौजूद नहीं है ना, अब मैं क्या करूँ? वो कहता है जी मेरे बताना नहीं, मेरी वाइफ को नहीं बताना. हमारे पास क्या है? हमने तो ये सुना हुआ है कि भाई किसी का रात अफशा करना, किसी का ऐप को जो है ना वो छुपाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए. मैं ये कह दूँ कि जी दीन में तो मना है, तो क्या ये है? लेकिन है तो यही, लेकिन उसको किस तरह दीन अप्रोच के, दीन की नहीं, उसको किस तरह हम करेंगे, जब कब मैं कैसे कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा, ये चीज़ें हम डिस्कस करनी.
हमारे यहाँ बहुत कॉमन सिनेरियो ये है कि बच्चियों को टाइप 1 डायबिटीज होती है
जी,
तो बच्चियों की शादियाँ नहीं हो पाती टाइप 1 डायबिटीज, अगर फैमिली अपने रिश्ते डालने वालों को बता दें तो वो लोग क्या करते हैं, पहले छुपा के रखते हैं
जी.
अब हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम अभी नहीं बताएंगे, आप ऐसे इंसुलिन या ऐसी रेजिमेंट बता दें जो शादी हो जाए. शादी होते ही हम किसी न किसी तरह डिक्लेयर कर दें, जब वो डिक्लेयर करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम उनको इंडोर्स करें कि शौहर को बताएं कि अभी हुई है डायबिटीज, हालांकि हमारे रिकॉर्ड में 5 साल से
जी, जी, जी.
तो उसका हम तो अवॉइड करते हैं कि हम कहते हैं कि ये इसमें हम नहीं पढ़ सकते, अगेन कुछ शरिया कंप्लायंस की बात है, लेकिन ऐसे इशूज हैं तो हम फिर मुफ्ती साहिबान से. जैसे एक बेचारी बूढ़ी औरत आई थी, उसको एक साहब लेकर आए थे साथ के, वो बूढ़िया या खातून उनके पास ही रहती थी, तो उनके एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ी, तो हमने कंसेंट लेकर और एम्पुटेशन भी कर दी. बाद में उस बड़ी बी का सगा भतीजा आ गया जो बाहर में रहता, उसने कहा वही तो मैं था और फंड भी मैं देता था, आपने विदाउट माय कंसेंट कैसे एम्पुटेट कर दिया, और वो लाइफ सेविंग थी एम्पुटेशन
जी, जी जी
जी. बट वी वर देन एक तरफ ये थे कि शरण भी हम समझे कि हम फंस गए, कि हमने अलग काम करा लेकिन लाइफ सेव करनी थी, और हम उससे ये चेक नहीं कर सके जो बच्चा पहले लाया था the next of kin actually, aapko
exactly.
Yeah, somebody else hai, who is the financer, who is the blood relation,
etc. Aise, bilkul aise.
So, ye cheeze aap highlight
kar. Exactly, next of kin ke liye. If you don't have any further questions, it's already late. Dr. Anif, if you can conclude.
अस्सलाम वालेकुम. मेरा ख्याल है बहुत सारी बातें हो गई, बस मैं इतना कहूँगा कि बहुत काम करना है, हम सबको मिल के करना है. और ये जो सेशन हम कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि लाइक माइंडेड लोग जो हैं आगे बढ़ें अपने अपने तरीके से, जो जो जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और मेनली जो है ना टाइम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आरिफ साहब की एग्जाम्पल को उन्होंने एंडोर्स किया कि वली का, तो ऐसे हम पिछले सालों में जब भी बैठते हैं यू नो तशरीह का एहसास होता है कि भाई अभी तो बहुत करना बाकी है. तो बस ये गुजारिश है कि इस बात को आगे फैलाएं. आपका आज आना अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आपकी आए ये भी एक बहुत बड़ी एक सआदत है. और इंशाल्लाह जो है आइंदा जो भी हमारे प्रोग्राम रहेंगे उससे भी आपको मुतला करेंगे. आप हो सके तो अपना ईमेल एड्रेस वगैरह शेयर कर लें हमारे सेक्रेटरी साहब से, तो आपको हम अपने लूप में रखें और आप अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन हो. बहुत शुक्रिया.
اجازت ہے مہمانوں کا ہمارے کمرے میں.